पृष्ठ संख्या 23। यूरोप के अंदर संघर्ष। यूरोपीय देशों के संघर्ष उपनिवेशों के प्रश्न तक ही सीमित नहीं थे, यूरोपीय मामलों को लेकर भी उनके बीच तनाव और वैर विरोध था। उस समय के 25 में से 5 यूरोपीय राज्यों को शक्तिशाली राज्य कहा जा सकता था। ये वे थे ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया हंगरी तथा रूस। इनमें से ब्रिटेन सबसे समृद्ध और शक्तिशाली था। ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली लागू थी, यद्यपि राजपद को कायम रखा गया था। 19वीं सदी के दौरान पारित अनेक सुधार अधिनियमों के बाद भी ब्रिटेन संसद के निर्वाचित सदस्यों के सदन हाउस ऑफ कॉमन्स को दूसरा सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिनके सदस्य वंशानुगत होते थे, सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता था। अब भी सभी पुरुषों को मताधिकार नहीं प्राप्त था और स्त्रियों को तो बिल्कुल ही नहीं। उन दिनों ब्रिटेन के सामने जो एक बड़ी समस्या थी, वह थी आयरलैंड वासियों की स्वशासन होम रूल की मांग से निपटना। आयरलैंड में स्वतंत्रता के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन खड़ा हो रहा था। भले ही उत्तरी आयरलैंड में बहुत से लोग, जिनमें से अधिकांश इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से जाकर वहां बस गए थे, इस आंदोलन के खिलाफ थे। जर्मनी आर्थिक तथा सैनिक दोनों दृष्टियों से यूरोपीय महाद्वीप के सबसे बड़े शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा था और वह ब्रिटेन का मुख्य प्रतिद्वंद्वी तथा वहां भी संसदीय शासन प्रणाली लागू थी। हालांकि जर्मन सम्राट की स्थिति ब्रिटेन के राजा से बहुत अधिक मजबूत थी। जर्मन भूभाग में पोलैंड का एक हिस्सा और 1870 से 71 की लड़ाई में फ्रांस से छीना गया अल्सेस लोरेन भी शामिल था। यूरोप के तीसरे सबसे अधिक उद्योगिकीकृत राज्य फ्रांस में 1871 से ही गणतंत्र कायम था। उसके मन में जर्मनी के हाथों अपनी अपमानजनक पराजय का बदला लेने की आकांक्षा 1871 से ही पल रही थी। वह प्रतिशोध की लड़ाई में अल्सेस लॉरेन वापस लेने के लिए कसमसा रहा था। मध्य यूरोप की एक प्रभुत्वशाली शक्ति हैवसवर्ग साम्राज्य था। हैवसवर्ग राजवंश ऑस्ट्रिया और हंगरी इन दो देशों पर राज करता था, इसलिए इसे ड्यूअल मोनार्की अर्थात द्विदेशीय राजतंत्र कहा जाता था। फ्रांसिस जोसेफ ऑस्ट्रिया का सम्राट होने के साथ ही हंगरी का राजा भी था। राजनीतिक दृष्टि से ऑस्ट्रिया हंगरी यूरोप का सबसे अधिक अशांत राज्य था। यूरोप के एक बड़े क्षेत्र में फैले इस साम्राज्य के प्रदेशों में ऑस्ट्रिया तथा हंगरी के अतिरिक्त ऐसे अनेक इलाके शामिल थे जिनमें अलग-अलग राष्ट्रीयता वाले लोगों का निवास था। इनमें बोहेमिया और मोविया के चेक तथा अस्लाव, पोल, रोमानियाई, सर्ब, क्रोट तथा इतालवी सम्मिलित थे। इन सभी प्रदेशों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो चुकी थी, जिससे तीव्र असंतोष और विभेद फैला। ऑस्ट्रिया हंगरी के अस्लाव लोगों के राष्ट्रवाद को रूस और सर्बिया से बढ़ावा मिलता था। इससे इन दोनों देशों और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच प्रबल वैर भाव पैदा हो गया। रूस यूरोप का सबसे बड़ा देश था और उसने जो विस्तृत साम्राज्य स्थापित किया था, उसमें यूरोप के बाल्टिक राज्य, फिनलैंड और पोलैंड का कुछ हिस्सा शामिल थे। इसके अलावा उत्तरी और मध्य एशिया भी इसके अंग थे। उसके जो थोड़े बहुत उद्योग थे, वे कुछ बड़े नगरों तक ही सीमित थे। उसकी राजनीतिक व्यवस्था युग जर्जर हो चली थी। वहाँ जार कहे जाने वाली रूसी सम्राट का निरंकुश शासन था। 1905 तक वहाँ नाम मात्र को भी कोई संसद नहीं थी। 1905 की क्रांति के बाद ड्यूमा नामक एक संसद स्थापित की गई, लेकिन उसके हाथ में कोई सत्ता नहीं थी। रूसी साम्राज्य की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था के कारण वहाँ की गैर रूसी जातियों में असंतोष की आग भड़क रही थी। यूरोप का एक और राष्ट्र जो शक्तिशाली होने का दम भरता था, इटली। उसकी औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाएं प्रबल थीं, लेकिन उत्तरी हिस्से को छोड़कर बाकी का इटली पिछड़ा हुआ था। यूरोप के कुछ तनावों का कारण उस्मानिया, ओटोमन साम्राज्य, का बिखराव भी था। 19वीं सदी के आरंभिक दौर तक पूरा बाल्कन प्रायद्वीप उस्मानिया साम्राज्य का हिस्सा था। पूरे 19वीं सदी के काल में उस्मानिया और रूसी साम्राज्यों के बीच युद्ध चलते रहे थे। उस्मानिया साम्राज्य के यूरोपीय प्रदेशों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के रूस के प्रयत्नों को यूरोपीय देशों, खास तौर से ब्रिटेन, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी ने विफल कर दिया। 20वीं सदी का आरंभ होते होते बाल्कन देशों पर उस्मानिया हुकूमत लगभग समाप्त हो चुकी थी। सर्बिया, बुल्गारिया और अल्बानिया स्वतंत्र राज्य बन चुके थे, लेकिन उस्मानिया साम्राज्य के टूटने से यूरोपीय एवं विभिन्न यूरोपीय देशों की राष्ट्रीयता की समस्या का समाधान नहीं हुआ। सर्बिया अस्लाव जाति के रक्षक के रूप में सामने आया। इस जाति के बहुत से लोग ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के वासिंदे थे। सर्बिया की आकांक्षा 73 सर्बिया के निर्माण की थी, जिसमें वह उस्मानिया साम्राज्य से ऑस्ट्रिया हंगरी द्वारा छीने गए बोस्निया और हर्जेगोविना प्रांतों के अलावा उसने उन दक्षिण प्रदेशों को भी शामिल करना चाहता था जहां क्रोट, अस्लोविन और सर्ब मूल के अस्लाव लोग रहते थे। अपनी इस आकांक्षा की पूर्ति के लिए वह रूसी सहायता पर निर्भर कर रहा था। उसने इन प्रदेशों में असंतोष भड़काना शुरू किया और ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा। यह क्षेत्र यूरोप में बढ़ते तनावों का स्रोत बन गया और अंत में यही वह घटना घटी जिसको लेकर प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा। 1908 में ऑस्ट्रिया हंगरी ने बोस्निया हर्जेगोविना को अपने साम्राज्य में मिला लिया। यद्यपि ये दोनों प्रांत औपचारिक रूप से उस्मानिया साम्राज्य के हिस्से थे, तथापि वास्तव में इन पर ऑस्ट्रिया हंगरी ने पहले से ही अपना नियंत्रण स्थापित कर रखा था। अब जबकि उसने इन्हें विधिवत अपने साम्राज्य में मिला लिया, तो सर्बिया चाहता था कि इस बात को लेकर रूस ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ लड़ाई छेड़ दे, लेकिन जर्मनी ने धमकी दी कि अगर लड़ाई छिड़ी तो वह ऑस्ट्रिया हंगरी की मदद करेगा। फलतः रूसी लड़ाई छेड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। 1912 से 13 के बाल्कन युद्ध के फलस्वरूप सर्बिया में ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ और भी कटुता बढ़ी। सर्बिया तथा कुछ अन्य बाल्कन राज्यों ने मिलकर रूस की सहायता से उस्मानिया साम्राज्य से मैसिडोनिया को जीत लिया, लेकिन उस्मानिया की पराजय के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ब्रिटेन और जर्मनी की सहायता से अल्बानिया को एक स्वतंत्र राज्य बनाने में सफल हो गए। जबकि सर्ब लोगों को आशा थी कि उनकी जीत के फलस्वरूप वह सर्बिया का हिस्सा बन जाएंगे।